तुम्हारे समान वो हंसती रहती थी। और विशेषण आश्रम स्थाने हास्यम न प्रशस्यते। सीता दीदी तुम हंसी कर रही हो तो ये दंडकारण्य हंसने के लिए नहीं है, ये दंडकारण्य तपोभूमि है सीते, ये तपस्या करने के लिए है। तपस्वी व्यक्ति कभी परिहास नहीं करता है। और यदि तुमको कोई राक्षस खा भी गया हो तो हमको क्या पता चले। ये देखो लक्ष्मण, ये मृग रो रहे हैं, क्या बात है, ये क्या बता रहे हैं? और हाँ बताओ बताओ मृग क्या बात है। ए साध्वी, तुमको तो कोई नहीं बोलता है। केकई, तुमने ये क्या समझ के वरदान लिया, क्या बताऊं अब तो मैं अंतःपुर में कैसे आऊंगा, नहीं आऊंगा। लक्ष्मण, कितना अच्छा हो, सबका मैं एक साथ भला कर दूंगा। लक्ष्मण, एक चिता बनाओ, सीता तो है नहीं, और मैं चिता के अंदर भस्म हो जाता हूँ। तुम वहां अयोध्या में जाना और वहां जाकर के तुम ये किसी को मत कहना, न त्वम ताम बिना सीताम जीवे। तुम अयोध्या में चले जाओ, तुम तो अयोध्या रहो, सीता को कोई मारी दिया है और मैं मरी रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और भरत को जाकर मेरा गार्ड आलिंगन करते हुए उसको समझाना कि राम ने तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम पृथ्वी का पालन करो और सब माताओं के साथ बड़ा प्रेम का बर्ताव करो, ये तुमको सभी माताओं को कहना है। कौशल्या जी को प्रणाम कह देना। जाओ लक्ष्मण, अब तुम जाओ, सीता का विनाश हो गया है और मैं भी अब जीवित नहीं रहूंगा। ये बात विस्तीर्ण जनन्या में तुम जाकर मेरी माँ को तो सब बात बता देना, और किसी को ज्यादा ये बात कहने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से राम जी महाराज बहुत विलाप करने लगे, लक्ष्मण जी भी बड़े व्यथित हुए। वो राजपुत्र सीता के वियोग में रोते हुए फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इस संसार में मेरे जैसा कोई पापी व्यक्ति होगा कोई लगता नहीं है, क्योंकि मेरे एक दुख के बाद दूसरा दुख आता ही रहता है। देखो पूर्वम मया नूनम अभिप्सितानि, कोई मैंने जरूर पाप किए हैं, क्योंकि पाप का फल भोगे बिना कोई नहीं रहता। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले बात बताऊं, मुझे राज्य मिलने वाला था, राज्य नहीं मिला। फिर मेरा माता पिता से वियोग हो गया, फिर मेरे पिताजी चले गए, माताओं से वियोग हो गया, और जन वहां चित्रकूट के अंदर भाइयों से वियोग हो गया, माताओं से वियोग हो गया। इन सब वेगों को तो मैंने जैसे तैसे सहा, परंतु लक्ष्मण अब इन सब दुखों से सबसे बड़ा दुख सीता के वियोग का दुख है। लक्ष्मण, यदि सीता अकस्मात आश्रम में मर जाती तो भी इतना दुख नहीं होता, लेकिन सीता का कुछ पता नहीं है, ये मुझे बहुत दुख की बात तो यह है। मरना जीना तो भाई अपने भाग्य और प्रारब्ध के अधीन है। सीता यदि मर गई होती स्वाभाविक मौत से तो मर गई, कोई अर्जा नहीं, परंतु सीता को किसी ने हमारे बिना हमको छल करके छीना है, उसको खाया है, हम लोगों ने उधर ध्यान नहीं दिया है, इस बात को लेकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ओहो, सीता का सौंदर्य, सीता का स्वरूप, सीता का भाव ऐसा बड़ा दुर्लभ है। रक्षो वसम नूनम उपागताया नभ्राजते राहु मुखे यथेन्दु। जैसे राहु के पास में चंद्रमा की शोभा नहीं होती, ऐसे किसी राक्षस के हाथ में सीता गई भी होगी तो सीता ऐसे ही जो है चंद्रमा के समान शोभाहीन हो गई होगी। मेरे बिना ये जंगल के अंदर सीता किस प्रकार से, देखो आश्रम से घसीटी गई होगी, उसकी चोटी पकड़ करके राक्षसों ने उसको घसीटा होगा और फिर उसका शरीर छिल गया होगा, फिर उसको पकड़ करके शिला के ऊपर पटका होगा, और फिर उसका मांस खा खा करके उन राक्षसों ने जो है सीता को दुख दिया होगा। हाँ, ये गोदावरी भी तो कैसी है। गोदावरीयम सरिताम वरिष्ठा प्रिय प्रियाया मम नित्य कालम अप्यत्र गच्छेत इति चिंतयामि। क्या बात है, गोदावरी में तो प्रवेश नहीं कर गई, परंतु क्यों जाए। अरे गोदावरी भी नहीं बोलती है, ये पद्म के फूल ये भी तो कुछ नहीं बोलते हैं, क्या बताएं, कोई भी तो आज मेरी सहायता करने वाला नहीं, अरे वो वृक्षों, नदियों, पर्वतों, लताओं, पुष्पों, आपके साथ सीता का इतना प्रेम था, आप बताओ तो सही। मम प्रियासा कवगता हतावा, वो मरीज जी क्या है बताओ तो सही, कुछ तो बात का पता चले। लोकेशु सर्वेशु नास्ति किंचित यत्तेन नित्यं विदितं भवेत्। इस संसार में जब तक तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा सीते, तब तक हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। इस प्रकार से सीता जी के लिए फिर विलाप करने लगे। तो भाई लक्ष्मण जी ने उनको कहा कि महाराज आप शोक मत कीजिए, उत्साहित होइए। देखो मनुष्य में धैर्य की परीक्षा विपत्ति के काल में होती है, उत्साह की परीक्षा विपत्ति के काल में होती है। ऐसे विपत्ति के समय में मनुष्य को खूब धैर्य से काम लेना चाहिए। ये धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। आपके तूणीर में रखे हुए शस्त्र आज काम नहीं आ सकते, ये तो शत्रु का शरीर सामने आएगा तब काम आएगा। पर जो शत्रु आपके अंदर से पैदा हो रहा है, उसको मारने के लिए तो आपको अपने अंदर से ही तो वीर पैदा करने होंगे। आपके अंदर शोक पैदा हो रहा है, इसको मारने के लिए धैर्य पैदा कीजिए। ये शस्त्र आपके शत्रुओं के लिए है, आंतरिक शत्रुओं के लिए आंतरिक मित्र काम आएंगे। सीता जी ये बात सुनकर के सीता के वियोग में डूबने वाले राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक काम करो, तुम गोदावरी के पास जाओ और वहां के वृक्षों के पास जाओ और वहां देख के आओगे सीता कहाँ है। लक्ष्मण कहा ये बात है ना, अभी जाता हूँ। लक्ष्मण जी गए गोदावरी के, वहां जाकर सब कुछ देख करके राम से कहा कि महाराज गोदावरी के पास गया हूँ, गोदावरी के तट के ऊपर कहीं पर भी सीता नहीं है। जहां तक जल का प्रश्न है, कहीं पर भी जल के अंदर भी सीता हो ऐसा हमको प्रतीत नहीं हो रहा है। राम जी ने कहा अच्छा चलो मैं भी गोदावरी पर फिर मैं भी चलता हूँ। तो राम जी फिर गोदावरी नदी के किनारे गए और गोदावरी के सामने कहने लगे, गोदावरी नदी आप बताओ सीता कहाँ है। लक्ष्मण ये इतने 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 प्राणी यहाँ है, ये कोई नहीं बताते हैं, गोदावरी नदी भी नहीं बताती है कहाँ है किधर है, कोई बताता भी नहीं है। रावणस्य च तद्रूपं कर्मापि च दुरात्मने ध्यात्वा भयात् वैदेहीं सा नदी न संशय। असल में गोदावरी ने क्यों नहीं कहा, इन वृक्षों ने प्राणियों ने क्यों नहीं कहा, उनको मालूम है कि रावण का कर्म बहुत जो है विलक्षण है। रावण के गुप्तचर राम के पीछे पीछे लगे हुए हैं और यदि राम को किसी ने कह दिया कि रावण ले गया है, ये बात जब रावण को पता चलेगा तो रावण राम के साथ तो बाद में युद्ध करेगा, पहले वो कहने वाले को मारेगा। इसलिए कोई भी राम को ये नहीं कहते हैं कि सीता कहाँ गई है, मालूम है लेकिन बोलते नहीं है। राम जी ने फिर कहा, लक्ष्मण ये गोदावरी कुछ नहीं बोलती है, ओहो मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, कभी मुझे जनक जी महाराज मिलेंगे और वहां मुझे कहेंगे कि राम मैंने तुमको सीता दी थी, वो सीता कहाँ है, मैं कैसे कहूं कि सीता का किसी ने हरण कर लिया क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं कैसे कहूंगा कि सीता को किसी ने खा लिया इसलिए सीता नष्ट हो गई। तो भाई तुम कहां थे, तुम सीता की रक्षा नहीं कर सके। अरे जो पति पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है उस पति को उसके साथ विवाह करने का कोई अधिकार नहीं होता, तुम अपने पत्नी की रक्षा करो। मैं अपने ज्ञाति ज्ञाति लोगों के बीच में बैठूंगा तो उस समय सीता रहित में बैठा हुआ कैसा लगूंगा, लोग मेरी तरफ इशारा करेंगे इसकी सीता थी और इसको पता ही नहीं है कि स्त्री कहाँ है, इसको पता ही नहीं है कि जिंदी है कि मर गई है, इस प्रकार से लोग मेरे पर ताना मारेंगे। ये क्या है भाई, देखो देखो लक्ष्मण इन मृगों की ओर देखो, ये मृग मेरे पास आए तुम्हारे पास है, ऊंचा मुख किए हुए हैं और यू दक्षिण की तरफ कैसे कर रहे हैं, दक्षिण की तरफ इशारा कर रहे हैं, हाँ क्या बात है लक्ष्मण, इसका मतलब है कि दक्षिण की तरफ सीता गई है, तो अपने दक्षिण की तरफ चलो, अपने इधर तो बहुत ढूंढे लेकिन दक्षिण की तरफ नहीं गए थे, हाँ हो दक्षिण की तरफ चलना चाहिए। रावण लिख रहे हैं रावण दक्षिण की तरफ ही गया था, बेचारे हिरण इतना ही कर सकते थे, आते हुए राम जी को अब इशारा मिल गया हिरणों के द्वारा। तो लक्ष्मण जी ने बड़े धैर्य के साथ राम जी से कहा, हाँ महाराज, मैंने इन हिरणों से पूछा क्वा सीता, सीता कहाँ है? तो इन्होंने दक्षिण की तरफ ही इशारा किया है, जैसा आप बता रहे हैं वैसी बात है। चलो महाराज दक्षिण दिशा में चलते हैं, दक्षिण दिशा हमारी देखी हुई नहीं इसलिए चलते हैं। थोड़ी दूर आगे गए, थोड़ा ध्यान से सुनना हो, थोड़ी दूर आगे गए तो वहां पर पृथ्वी पर थोड़े से फूल गिरे हुए मिले। फूल मिले तो राम जी, लक्ष्मण इधर आओ इधर आओ, ये देखो ये देखो सीता के फूल है, इन फूलों को मैं जानता हूँ क्योंकि सीता इन फूलों को बहुत चाहती थी। ये तो फूल वो पहने रखी थी जिसमें अपने गए थे, ये सीता के फूल है, सीता ने नीचे गिराए हैं। क्या बात है, ये फूल यहाँ गिरे इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कोई समझ में नहीं आया है, लेकिन राक्षस कोई यहाँ सीता को किस गुफा में ले गया होगा? लक्ष्मण देखो देखो, अब तो अपने को थोड़ा थोड़ा बहुत मामूली सा कुछ इशारा मिल रहा है। ओहो, इस पर्वत की अनेक गुफाएं अनेक गुफाओं में कहीं ले गया होगा, इस पर्वत के गुफाओं में जाते हैं और वहां सोने के स्वरूप वाली सीता को दर्शन करते हैं। ए पर्वत, या तो तू सीता को दिखा देना और या फिर मेरे बाण के द्वारा तुझे उसी प्रकार से विदीर्ण किया जाएगा जिस प्रकार से इंद्र के वज्र से तुम लोगों की पांखें काट दी थी। इस प्रकार से भगवान ने यूं धनुष बाण धनुष के ऊपर बाण रखा और वहीं पर सीता जी के थोड़े आभूषण भी दिखाई दिए। राम जी ने उन आभूषणों को देख करके कहा, लक्ष्मण क्या बात है, पहले मुझे फूल दिखाई दिए, अब आभूषण दिखाई दे रहे हैं। अरे इसका मतलब ये पर्वत उसको छिपाए हुए बोलता नहीं है। फिर कहा, हे पर्वत, मेरी बाणाग्नि से तू अभी जल करके राख हो जाएगा, तुझे बहुत ऋषि मुनियों ने आदर दिया है और आज जब मैं तुमसे सीता के विषय में पूछता हूँ तो तुम मुझे कुछ नहीं बताते हो, तो मेरे बाण के द्वारा आज तेरा नाश होना निश्चित है। इस प्रकार से जब राम जी ने जोर से बात कही उसी समय में एक राक्षस का पैर जमीन में धसा हुआ दिखाई दिया। राम जी ने देखा, भूमि के ऊपर देखा, क्या बात है, तो भूमि को भूमि के ऊपर राक्षस का पैर देख करके और वहीं पर सीता का इधर उधर भगते हुए पैर देखा। अरे अरे लक्ष्मण, ये देखो ये सीता के चरण है, ये सीता के चरण और ये किसी राक्षस के पैर के चरण है। ओहो, यहाँ ये देखो ये धनुष टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कवच पड़ा हुआ है, ये रथ पड़ा हुआ है, क्या बात है। लक्ष्मण अब देखो अपने को कुछ न कुछ इशारा मिल रहा है, यहाँ कोई सीता के लिए किन्हीं राक्षसों का युद्ध हुआ होगा, दो राक्षस लड़े होंगे, तभी तो देखो रथ टूटा हुआ है, तभी तो देखो धनुष टूटा हुआ है, तभी तो कवच और छत्र टूटे हुए हैं, ये देखो पिशाच मुख वाले गधे मारे हुए पड़े हैं और ये रथ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, ये यहाँ कोई युद्ध हुआ है और इस युद्ध के अंदर कोई मारा गया है, पर ये बाण है, ये बाण किसके हो सकते हैं? बाण तो बड़े तीखे बाण है, ये बाण राम जी ने वो रावण के बाण उठाए, ये कोई बड़े श्रेष्ठ धुरंधर बहुत बड़े बलवान के बाण दिखाई देते हैं, मुझे विश्वामित्र जी ने बहुत से बाणों की शिक्षा दी थी, उनमें ये बाण भी है, यद्यपि ये बाण कोई बहुत बड़े नहीं है परंतु फिर भी ये बाण अपने आप में तो मेरे पास जो बाण है उनसे तो कमजोर होते हुए भी और लोगों के पास तो ऐसे बाण भी नहीं हो सकते हैं। ये किस पुरुष का पैर हो सकता है? वैरम सतगुणम पश्य ममतै जीवतांतकम। लक्ष्मण तुम तो कहते हो शोक मत करो, अब शोक तो मेरा कम हुआ लेकिन अब मेरा बैर बढ़ता जा रहा है, ये क्या बात है? सीता मारी गई कि हरी गई कि खा लिया, अभी तक भी पूरा ज्ञान नहीं हुआ, कुछ चिन्ह जरूर मिल रहा है। अरे इस संसार में कौन किसका होता है, कोई आदमी किसी प्रकार से कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं। मृदुम लोक हिते युक्तम दांतम करुण वेदिनम निर्वीर्य इति मन्यन्ते। देखो जो आदमी दूसरों के हित में लगा रहता है, जो आदमी सरल स्वभाव का होता है, जो आदमी दयालु होता है, उसको लोग कमजोर मानते हैं, ये कुछ नहीं है, ये आदमी किसी काम का नहीं है। और जो आदमी उद्दंड होता है, बदमाश होता है, चालाक होता है, धूर्त होता है, उससे लोग सब डरते हैं कि अरे भाई इससे तुम दूर रहना, ये तो बड़ा चालाक धूर्त बेईमान आदमी, उससे सब सावधान होते हैं। लेकिन भाई सरल आदमी से सभी आदमी बेपरवाह होते हैं। तभी देखो मुझे कोई नहीं बता रहा है, न यक्ष न गंधर्व न पिशाच न राक्षस न किन्नर न मनुष्य, कोई नहीं बता रहा है कि किसका युद्ध हुआ, सीता को कौन ले गया, कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संपूर्ण त्रिलोकी को नष्ट करूंगा, मैं यहाँ संसार में किसी को जीने नहीं दूंगा, प्रणष्टास्त नला मारुद, मैं सब 49 वायु है उन वायु का नाश कर दूंगा, भास्कर द्युति समृतम, और सूर्य की किरणों को मैं ढक दूंगा, चंद्रमा की किरणों को ढक दूंगा, किसी का सांस देना भी मैं संसार में कैसे होता है बता दूंगा। यदि ये सीता को नहीं देती त्रिलोकी, सारी त्रिलोकी को नष्ट करता हूँ, लक्ष्मण इसी मुहूर्त में करता हूँ, आकाश में मेरे बाण छा जाएंगे, सबको अवकाश नहीं मिलेगा, सब जहाँ के तहाँ जड़ीभूत रहेंगे, वायु को स्तब्ध कर दूंगा तो लोग श्वास नहीं ले सकेंगे, श्वास के बिना, सूर्य के बिना, चंद्रमा के बिना और आकाश के बिना लोग कैसे जिएंगे, और मैं पृथ्वी को भी फाड़ दूंगा, कैसे लोग जिएंगे, देवताओं को देख लूंगा देवलोक में कैसे रहोगे, देवताओं को देख लूंगा कोई जीवित नहीं रहेगा, नाशयामि जगत सर्वम, सारे जगत का नाश करूंगा। इस प्रकार से राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी के पास धनुष था, धनुष को ले लिया, धनुष को लेकर उस पर बाण लगाया, और बाण लगा करके राम जी ने कहा, लक्ष्मण जिस प्रकार से वृद्धावस्था मृत्यु को बुलाती है, जिस प्रकार शंकर प्रलय काल में क्रोध करते हैं, उस प्रकार से मैं आज अपने इस बाण के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को नष्ट करने जा रहा हूँ। इस समय या तो मुझे सीता को बता दो, नहीं तो संपूर्ण त्रिलोकी इस एक बाण से नष्ट होने वाली है। राम जी महाराज का हाथ पकड़ते हुए लक्ष्मण ने कहा, हे महाराज ये क्या कर रहे हैं, एक सीता के लिए आपको इतना सब प्राणियों को दंड नहीं देना चाहिए, आप पहले कितने शांत थे, आप मुस्कुरा करके बोलने वाले थे, आप सब प्राणियों के हित में लगे रहने वाले हो, आपने अभी तक कभी क्रोध किया नहीं है, आप हम बच्चों के सामने क्रोध करते हैं, क्रोध करता हुआ आदमी अच्छा नहीं लगता है, उसके मुख की शोभा समाप्त हो जाती है, चंद्रमा में जैसे लक्ष्मी रहती है शोभा रहती है, सूर्य में जैसे कांति रहती है, वायु में जैसे गति रहती है, पृथ्वी में जैसे क्षमा रहती है, उसी प्रकार से आपके अंदर बहुत दिव्य गुण है, वो आप में रहने वाले हैं, आपके अंदर यश रहने वाला है, इसी यश को आप क्रोध के द्वारा नष्ट मत करो, धैर्य रखो। यद्यपि लक्ष्मण से मालूम देता है कि सीता मरी नहीं है, मान लो यदि सीता को किसी ने मार भी दिया है तो भी महाराज उसके बदले में सारे संसार को मारना ठीक नहीं है। आप देखिए यहाँ पर सीता के लिए युद्ध हुआ है, आप यहाँ तक सोचिए ना कि कौन व्यक्ति हो सकता है, किसके साथ युद्ध हो सकता है, ये जो है रथ किसका हो सकता है, किस देश में ऐसे रथ बना करते हैं, और किस देश में ऐसे बाण होते हैं, किस देश में ऐसे गधे होते हैं, किस देश के अंदर ये वस्तुएं होती है, इन सब बातों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। और जहां तक मैंने देखा है, आप तो शोक में डूबे हुए, मैंने देखा है यहाँ एक आदमी है, मनुष्य का एक ही पैर है, एक मनुष्य के ही पैर है, यहाँ कोई बहुत बड़ी सेना थोड़े ही आई है, एक ही रथ है, एक ही धनुष टूटा है, और जो है यहाँ पर वो रथ और सारथी भी मरा हुआ तो एक ही है, तो किसी ने अपराध किया तो एक ने किया है, उस एक के कारण से सारे संसार को दंड देना ये आपके लिए अच्छा नहीं लगता है, आप तो राजा हो, सबको आप आश्रय देने वाले हो, इसलिए आप आश्रय देने की बात करो, मारने की बात मत करो। ये सागर, ये सरिदाएं, नदियां, ये पर्वत, ये सब सबके उपयोग में आने वाली चीज है महाराज, देवता गंधर्व दानव ये किसी का बुरा नहीं करते हैं, आप तो केवल ये देखिए, आप एक एक जगह जाइए, आप एक एक से पूछिए, और आप पूरी कोशिश कीजिए ये कौन है सीता को लेने लेकर के यहाँ आने वाला, इसका खूब अच्छी तरह से विचार कीजिए। उसके बाद यदि सब उपाय कर लेने के बाद यदि सीता की प्राप्ति न हो तब तो आपका क्रोध करना कुछ हद में सही हो सकता है, लेकिन अभी नहीं भरा। अभी तो आप शीलेन सामना विनयेन सीताम नयेन न प्राप्स्यसि चेन नरेन्द्र, पहले शील स्वभाव से, शांति से, विनय से, सब उपायों से सीता की खोज कीजिए, और उसके बाद यदि सीता न मिले तो अपने पराक्रम की बात अपने सोचेंगे। शोक संतप्त राम जी महाराज को लक्ष्मण जी ने फिर समझाते हुए कहा, हे राम आपके चरणों में मेरा शीश है। राम जी के चरणों को दबाते हुए उसने कहा कि महाराज इस संसार के अंदर बड़े बहुत गुणवान पिता का प्राप्त करना बड़े भाग्य से मिलता है। कोई बहुत बड़ी तपस्या होती है तब अच्छे माँ बाप मिलते हैं, बहुत बड़ी तपस्या होती है तब आपको ये अयोध्या का अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ जन्म मिला है, और बहुत बड़ी तपस्या मिली है तब आपको कौशल्या जैसी माँ मिली है, और आपको भरत जैसा भाई मिला है, आपको सीता जैसी पत्नी मिली है। ऐसे समय में महाराज आप दुख मत कीजिए। जहां तक संसार में कष्ट की बात है, इस संसार में आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ कि जिसके सामने आपत्ति न आई हो। प्राणी ने कस्य न आपद है, कौन ऐसा प्राणी है कि जिसके संसार में जिसके सामने संसार में आपत्ति न आई हो। हे महाराज यदि आप इस प्रकार से दुख से जलते रहेंगे तब तो आपको कभी शांति मिलेगी नहीं। सबसे बड़े त्रिलोकी में कौन है, इंद्र है। इंद्र को भी पूछो कि क्या तुम्हारे पर आपत्ति नहीं आई, क्या तुमको नहुष के बेटे ययाति ने धक्का देकर तुमको नीचे नहीं पटक दिया था। उस इंद्र से पूछो कि तुम पानी के अंदर हजारों वर्ष तक नहीं पड़े थे। क्या इंद्र से पूछो कि तुम्हारी पत्नी को ययाति ने अपने पास नहीं रखा था। इंद्र के सामने भी आपत्ति आई। हमारे गुरु वशिष्ठ जी महाराज इनसे पूछो, इनके 100 बेटा एक दिन में पैदा हुए थे और विश्वामित्र के शाप से एक ही दिन में 100 बेटा मर गए, क्या वशिष्ठ जी पर आपत्ति नहीं आई। अच्छा जिस भूमि पर हम लोग फिरते हैं इस भूमि को देखो, क्या भूमि में भूकंप नहीं आता है। इन आकाश में रहने वाले सूर्य और चंद्रमा को देखो, क्या आपको कभी ग्रहण नहीं लगता है। सब प्राणियों पर होता है, इंद्रादि देवताओं से लेकर के सामान्य कीट पतंग तक जब सब पर आपत आती है तो आपत आती ही है। यदि सीता मर भी गई हो, यदि सीता नष्ट हो गई हो, खाली गई हो, तो भी आपको शोक नहीं करना चाहिए। ये शोक तो अज्ञानियों का होता है, आप तो ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। आप धैर्य रखिए, धैर्य बहुत बड़ी चीज है, और बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बुद्धि से खूब अच्छी तरह से सोचता है। देखिए जो सामने हमारे सामने प्रतिकूलता आती है उसको बुद्धि के द्वारा समझ करके उससे बचना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने दूसरे बल के द्वारा इस विपत्ति से बच जाए ऐसा संभव नहीं है। महाराज मैंने कितनी बार क्रोध किया था, मैंने अयोध्या में क्रोध किया, आपने मुझे छाती से लगाकर प्यार से मुझे क्रोध से रहित किया। चित्रकूट में क्रोध आया, आपने मुझे शांत किया, आप मुझे शांत करने वाले हो। मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आप तो साक्षात बृहस्पति के समान हो। मैं आप ही का ज्ञान आप ही को दे रहा हूँ, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूँ। आप महाराज इस क्रोध को शांत कीजिए। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारी बात अक्षर से सत्य है, परंतु मैं भी क्या करूं, मुझे जब तक ये सीता के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं मिली, मैं करूं क्या। लक्ष्मण मैं जानता हूं कि शोक नहीं करना चाहिए, परंतु आगे का क्या उपाय, कुछ तो करें। हाँ महाराज अभी अपने और जनस्थान का अन्वेषण करते हैं, यहाँ पर बहुत से राक्षस आया करते हैं। ऐसा करें कि जो राक्षस यहाँ अभी हमको दिखाई दिया है वो राक्षस गया कहाँ होगा, उसके पैर तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, जितनी देर पैर दिखाई दिए वहीं तक पैर है, उसके बाद वो किधर गया, इधर गया, उधर गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अब अपने सोचो कि वो कहाँ जा सकता है। मेरे विचार से वो यहाँ पर्वतों की गुफाओं में गया होगा। अपन इस पर्वत पर चले और इसकी गुफाओं को देखें। ये यहाँ पर किन्नर लोग भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं। यदि वो अपने को मिल जाते हैं तो उनसे अपने पूछते हैं, देखो आपस न प्रकंपनते वायु वेगी रिवा चला। इन पर्वतों से एक शिक्षा लीजिए, कितनी तेज आंधी आती है, वृक्ष के वृक्ष उखड़ जाते हैं, लेकिन पर्वत ज्यों के त्यों रहते हैं। इन पर्वतों को ढूंढिए, इन पर्वतों में ढूंढिए और इन पर्वतों से आप शिक्षा भी लीजिए। ठीक बात है लक्ष्मण, चलो चलते हैं। अब वो थोड़े दूर आगे गए, आगे जाके देखा एक खून से लथपथ वो जटायु जी, चारों तरफ शरीर में खून ही खून, खून ही खून। राम जी मनाने लगा, देखो लक्ष्मण ये रहा, ये वो राक्षस रहा, इसने सीता को खाया है। ये देखो सीता के खून से सना हुआ है, गीत रूप से बना हुआ है, ये राक्षस है, यही राक्षस है। अब अपने को और को मारने की मतलब नहीं और के पास जाने के नहीं, इस राक्षस को अभी मैं मारता हूँ। लाओ लक्ष्मण बाण लाओ, इसको मैं अभी मारता हूँ। इस प्रकार से अपने मुंह से खून उगलते हुए उस जटायु को जब राम जी ने देखा तो वो पक्षी जोर से कहने लगा, राम। राम जी का बाण है वही रह गया। राम, तुम जिसको जंगल में इस महावन में औषधि के समान एक एक जगह ढूंढ रहे हो, वो देवी रावण ने हर ली है और वो दक्षिण दिशा में गया है। तुम्हारे बिना और लक्ष्मण के बिना सूने आश्रम में रावण चला गया था और सीता को उसने हर लिया था। सीता के विलाप को सुनकर मैं उस रावण से खूब युद्ध किया था, उसके धनुष को, रथ को, सारथी को तोड़ दिया था, परंतु अंत में उसने तलवार से मेरी पंखें काट दी है और वो सीता को लेकर आकाश में उड़ करके चला गया है। राक्षसा निहतम पूर्वम माम न हंतुम त्वम हरसि, मुझे तो पहले ही उस राक्षस ने मार दिया है, हे राम अब तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैं तो एक तरह से मरा हुआ ही हूँ। राम जी ये बात सुने, उन्होंने अपना धनुष बाण कहीं फेंक दिया। राम जी तो टप टप रोने लगे, अरे गीतराज जी आप हो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। राम जी जाकर उस गीतराज से लिपट गए और लिपट करके राम जी महाराज कहने लगे, देखो सीते, देखो लक्ष्मण, सीता के मरने के दुख से ज्यादा दुख अब गीतराज जी का हो गया। मैं कहता था ना कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, अब सीता की हो रही, अभी हमारे गीतराज जी भी देखो किस प्रकार से मारे गए। राज्यम भ्रष्टम वने वास है, देखो राज्य चला गया, जंगल में आया, सीता मर गई और ये गीतराज जी भी मर गए। ऐसी मेरी दुर्भाग्य की ये परंपरा, दुर्भाग्य की श्रृंखला किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ओहो, इस दुख के सागर से कैसे पार होगा, मेरे जैसा भाग्यहीन व्यक्ति, जरा लक्ष्मण तो ढूंढ के तो लाओ। तुमने मुझे जिन जिन का नाम लिया है उनके ऊपर आपत्ति एक आती है, बराबर नहीं आती है। सूर्य और चंद्रमा इनके ऊपर ग्रहण लगता है, एक ग्रहण की आपत्ति है। पृथ्वी कंपित होती है, भूकंप ही एक आपत्ति है। इंद्र को एक बार हरा दिया था इसलिए एक बार आपत आई है। मेरे पास तो देखो आपत्तियों का क्रम आता चला जा रहा है। ये मेरे पिता के मित्र हैं, एक तरह से मेरे पिता के समान हैं। लक्ष्मण क्या करूं मैं, गीतराज जी भी चले गए, इनकी सहायता लेता, इन्होंने हमारी बहुत सहायता की, आगे मेरे बहुत सहायता इनकी मिलती हमको, गीतराज जी भी जा रहे हैं। इस प्रकार से गीतराज जी का बहुत स्पर्श किया और जहां पंख कटी हुई थी वो भी देखे राम जी ने। राम जी के मन में करुणा आ गई और फिर राम जी ने कहा, ममायम नूनमर्थेषु यतमानो व्यंगम है, लक्ष्मण देखो देखो मेरे लिए इन्होंने अपने प्राण दिए हैं, राक्षस के साथ इन्होंने युद्ध किया है, लड़ाई करते करते देखो लक्ष्मण इनके पांख काट दिए गए हैं, इनका स्वर है वो टूटता चला जा रहा है। जटायु जी, यदि आप कुछ बोलने में समर्थ हो तो मुझे सीता के लिए बताओ कि किसने आपका युद्ध करते हुए वध किया है, किस कारण से युद्ध किया है, उस रावण का मेरे प्रति क्या अपराध, रावण के प्रति मैंने कौन सा अपराध किया है जिससे रावण ने मेरी प्रिया सीता का हरण किया है। अब मैं उस सीता का कब मुख देख सकता हूँ, सीता ने उस समय क्या क्या बातें कही थी और उस रावण का कितना बल है, कितना पराक्रम है, ये सब बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यदि आप में बोलने की शक्ति है तो आप इन सब बातों का मुझे उत्तर दे देने की कृपा करें। लड़खड़ाती बाड़ी में जटायु राम जी से कहने लगे, सा सीता हता वो सा रीता वो सीता रावण के द्वारा आपके आश्रम में से हर ली गई थी। वो सीता जिस समय हरी गई थी, रावण ने एक माया फैलाई, सारे दिन में एक धुंध का एकदम धुंधला दिन कर दिया ताकि कोई सूरज न देखे, आकाश न देखे, तारे न देखे।